पृष्ठ संख्या 140, अध्याय 7, राग बिलास खानी तोड़ी। आज से कुछ वर्ष पूर्व राग बिलास खानी तोड़ी अप्रचलित रागों की कोटि में था, परंतु आधुनिक युग एक विकासशील युग है। सभी क्षेत्रों में विकास के अनेक साधन उपलब्ध हैं। संगीत के क्षेत्र में भी आकाशवाणी, बहुत सी संगीत संस्थाएं एवं संगीत सम्मेलनों का प्रचार होने के कारण तथा साथ ही संगीत विषय की बहुत सी पुस्तकों के प्रकाशित हो जाने से लोगों को सुनने, सीखने और पढ़ने का अधिक अवसर मिल सका है। साथ ही अप्रचलित रागों और सिद्धांतों को प्रकाश में लाने की सुविधा भी। इन्हीं सब कारणों के फलस्वरूप आज ऐसे राग भी अधिक से अधिक गाए बजाए जाते हैं। इतना होने पर भी ऐसे गायक वादक बहुत कम ही हैं जो ऐसे कठिन रागों का गायन वादन शुद्ध रूप में कर सकें। अधिकतर देखा गया है कि जब राग में द्रुत तानों का समय आता है तो अधिकांश लोग भैरवी की ही तान गाने लगते हैं और राग की जाति को संपूर्ण मानकर अपने को निर्दोष साबित कर देते हैं। कुछ पुराने गुरुजनों से तो ऐसा सुनने को मिलता है कि प्रस्तुत राग में पहले द्रुत तान गाने वाला अताई अथवा शिक्षाहीन गायक समझा जाता था, परंतु आजकल जो चाहे बिलास खानी तोड़ी हो या भैरवी, दरबारी कान्हड़ा हो या अड़ाना, जो गायक गायन के अंत में काफी द्रुत लय की हवाई जहाज की रफ्तार से तान नहीं गाता, चाहे वह सुर में हो या बेसुरा, ताने साफ हों या घसीट की हों, राग में हो या राग के बाहर चला जाए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसे ख्याति नहीं मिल सकती। वह उच्च कोटि का गायक समझा ही नहीं जा सकता। गायक ऐसे ही तान गाने में अपने को धन्य मानते हैं। कुछ गिने चुने गायक वादक हैं जो इन सब बातों को ध्यान में रखकर आज भी अपने गायन वादन को उत्तम रीति से प्राचीन पद्धति को नवीन रूप देकर प्रस्तुत करते हैं और शास्त्रीय संगीत के नाम को उज्जवल कर रहे हैं। राग बिलास खानी तोड़ी एक प्राचीन राग है। प्रस्तुत राग के रचयिता सुप्रसिद्ध गायक सम्राट तानसेन के सुपुत्र बिलास खां माने जाते हैं। इस राग के नाम से भी यही संकेत मिलता है। आजकल इस राग को सर्वसम्मति से भैरवी थाट के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी स्वर भैरवी के हैं। इसका वादी धैवत तथा संवादी गंधार है। गायन समय दिन का द्वितीय प्रहर है। प्रस्तुत राग के वादी संवादी थाट एवं गायन समय के विषय में भी सभी विद्वान एक मत हैं, परंतु इसकी जाति के संबंध में गुणीजनों में काफी मतभेद है। इसकी जाति कुछ लोग संपूर्ण संपूर्ण व कुछ लोग शाडव शाडव मानते हैं। लेखक के मत से शाडव शाडव जाति ही मानना अधिक उचित है। पंडित भातखंडे जी ने क्रमिक पुस्तक मालिका के छठे भाग में बिलास खानी तोड़ी में पांच बंदिशें दी हैं, जिसमें केवल एक बंदिश जबते मन मोहन, जो कि झूमरा ताल में निबद्ध है, संपूर्ण संपूर्ण जाति के आधार पर रची गई है, क्योंकि उसमें कोमल ग म, कोमल ध, कोमल ग, कोमल ध प, कोमल ग प, इस प्रकार स्वरों का प्रयोग हुआ है। बाकी के जो दो विलंबित ख्याल तथा एक चौताल व एक धमार है, इन चारों में आरोह में मध्यम एवं अवरोह में पंचम वर्जित करके शाडव शाडव जाति के आधार पर इनकी रचना की गई है, जिसमें से प्रसिद्ध ख्याल नीके घुंघरिया ठुमकत चाल चलत है, इस बंदिश के स्थाई व अंतरे में कहीं भी पंचम का प्रयोग नहीं हुआ है। आरोह अवरोह में पंचम वर्जित शाडव जाति की बिलास खानी का यह स्वरूप बिलास खानी तोड़ी का एक भिन्न प्रकार माना जा सकता है। पृष्ठ संख्या 141। प्राचीन रागों के शुद्ध स्वरूप क्या थे? यह तो ध्रुपद अंग के स्थाई अंतरे पर एक विहंगम दृष्टि डालने से ही ज्ञात होता है। अतः बिलास खानी तोड़ी के इस चौताल में निबद्ध बंदिश यथा अनहद शुद्ध उपजयो तथा ए मोरी अगिया ढर की इस धमार पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में भी इस राग के आरोह में मध्यम तथा अवरोह में पंचम वर्ज करने की प्रथा थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ख्याल गायकों ने द्रुत तानों की कुश्ती में सहूलियत व आसानी के लिए राग भ्रष्ट हो जाने की परवाह न करके इस राग को संपूर्ण संपूर्ण मानने लगे हैं। यह सत्य है कि द्रुत तान में राग का नियम शिथिल पड़ जाता है, परंतु यह उस समय किया जाता है जहाँ कोई गुंजाइश नहीं रहती, जैसे भूपाली देशकार की द्रुत तानों में अंतर नहीं रह जाता है। गोरख कल्याण में पंचम प्रयोग करने वालों के लिए द्रुत तान के समय नारायणी से बचना कठिन हो जाता है। यह क्षम्य है क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती। यह अवश्य है कि यदि गोरख कल्याण में पंचम न लगाया जाए तो तान में भी नारायणी से सहज ही दूर हो सकते हैं। जिस प्रकार गोरख कल्याण में तान की सुविधा के लिए पंचम लगाते हैं, उसी प्रकार बिलास खानी तोड़ी में भी राग भ्रष्ट हो जाने की परवाह न करके आरोह अवरोह में संपूर्ण स्वर का प्रयोग करने लगते हैं। प्रस्तुत राग में सा, कोमल रे, कोमल ग, प, कोमल ध, कोमल नी, कोमल ध, तार सा। तार कोमल रे, कोमल नी, कोमल ध, म, कोमल ग, कोमल रे, सा। इस आरोह अवरोह के हिसाब से द्रुत तान गाने में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। जो लोग इस कठिनाई को अभ्यास के द्वारा साध्य करने में असमर्थ हैं, उन्हें चाहिए कि ऐसे राग को गाना छोड़ दें। व्यर्थ अपने नाम की लालसा में राग को भ्रष्ट करना और जनता और शिक्षार्थी को भ्रमित करना, गलत रास्ता दिखाना अच्छा नहीं है। जो लोग इसे शाडव संपूर्ण मानते हैं, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि अवरोह करते समय कभी भी पंचम से मध्यम नहीं आते। अवरोह में जब तार कोमल रे, कोमल नी, कोमल ध ऐसा प्रयोग करते हैं, तो धैवत पर रुक कर प, कोमल ध, कोमल नी, कोमल ध, म, कोमल ग, कोमल रे, कोमल ग, कोमल रे, सा। इस प्रकार पंचम लगाते हैं जो आरोह का स्वर हो जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि अवरोह को भी संपूर्ण मानना उचित नहीं। जो लोग आरोह में मध्यम निषाद वर्जित करके प्रस्तुत राग को औडव संपूर्ण जाति का मानते हैं, उनका यह मत भी विचारणीय है, क्योंकि आरोह में कोमल रे, कोमल मंद्रनी, सा, कोमल रे, कोमल ग इस प्रकार का मुख्य स्वर समुदाय है। कोमल रे, मंद्र कोमल नी, सा, कोमल रे, कोमल ग गाते समय निषाद आरोह में स्पष्ट रूप से लग जाता है। अतः औडव जाति के स्थान पर आरोह शाडव जाति का मानना अधिक उचित है। कहने का अभिप्राय यह है कि राग के स्वरूप पर सूक्ष्म दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि जो विद्वान इस राग के आरोह में मध्यम और अवरोह में पंचम वर्जित करके इसे शाडव शाडव जाति का मानते हैं, वे इसके साथ अधिक न्याय करते हैं। अतः लेखक को भी यही मत स्वीकार है। पृष्ठ संख्या 142। प्रस्तुत राग अत्यंत कठिन होते हुए भी अत्यंत मधुर है। इसमें मींड का प्रयोग अधिक होता है, यथा तार कोमल रे, कोमल नी, कोमल ध का मींड, कोमल नी से कोमल ध म तक का मींड, कोमल रे, कोमल ग, फिर म से कोमल ग, कोमल रे, कोमल ग तक का मींड, फिर कोमल रे से मंद्र कोमल नी, मंद्र कोमल ध सा टक्का मींड। अवरोह के इस स्वर समूह को मींड के द्वारा सावकाश रीति से उच्चारण करने से यह राग तत्काल ही स्पष्ट हो जाता है। उत्तरांग प्रधान एवं दिन गेय राग होने के नाते अवरोह में भी राग का स्वरूप स्पष्ट होना उचित ही है। भैरवी राग के स्वरों में ही चलन तथा उच्चारण भेद से बिलास खानी तोड़ी राग का स्वरूप दिखना इस राग की विशेषता है। इस राग का गायन अथवा वादन प्रस्तुत करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मींड का प्रयोग अधिक हो और खटका मुरकी का कम से कम, क्योंकि खटका मुरकी का जितना ही अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही राग भैरवी के निकट आएगा। उदाहरणार्थ सा कोमल रे कोमल ग कोमल रे सा, इस स्वर समूह को यदि इस प्रकार गाएंगे जैसे सा कोमल रे जमजमा कोमल ग कोमल रे सा, तो भैरवी राग समझा जाएगा। यदि इस स्वर समूह को सा कोमल रे कोमल ग की मींड कोमल रे सा इस प्रकार गाएंगे तो बिलास खानी तोड़ी का अंग प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगेगा। इसी प्रकार सा कोमल रे कोमल ग म कोमल ग कोमल रे सा ऐसा गाने से भैरवी अंग दिखेगा, परंतु इसी स्वर समूह को यदि इस तरह सा कोमल रे कोमल ग मींड म कोमल ग कोमल रे सा गाने से बिलास खानी दिखेगा। तोड़ी के अति कोमल गंधार को ध्यान में रखकर गाने से भैरवी होने का भय कम रहता है। अति कोमल गंधार लगाने के लिए आरोह करते समय ऋषभ से गंधार को घसीटना चाहिए अर्थात खींचना चाहिए, जैसे कोमल रे से कोमल ग की मींड। इस प्रकार ऋषभ के सहारे गंधार को मींड के द्वारा गाने से स्वाभाविक ही अति कोमल गंधार अपने स्थान से लगने लगेगा। तोड़ी के प्रकार को गाने के लिए सबसे पहले तोड़ी के गंधार को गुरुमुख से सुनकर उसका लगाव व उच्चारण को भली भांति समझ लेना चाहिए। इसके पश्चात तोड़ी के प्रकार को गाने की चेष्टा करनी चाहिए। पृष्ठ संख्या 143। प्रस्तुत राग के पूर्वांग में सा कोमल रे कोमल ग कोमल रे कोमल ग कोमल रे सा कोमल रे कोमल ग प ऐसे स्वर समुदाय का अधिक प्रयोग करने से भूपाल तोड़ी की छाया आने लगेगी। इससे बचने के लिए उपरोक्त स्वर समूह में पंचम पर जाते समय बीच बीच में मध्यम को लगाते रहना चाहिए, यथा सा कोमल रे कोमल ग कोमल रे कोमल ग म कोमल ग कोमल रे कोमल ग कोमल रे कोमल ग प। इस प्रकार पंचम पर विश्राम करने के बाद फिर मध्य षड्ज से आलाप को सा कोमल रे कोमल मंद्रनी कोमल मंद्र ध सा कोमल रे कोमल ग म कोमल ग कोमल रे कोमल ग प इस प्रकार फिर पंचम पर आना चाहिए, या पंचम से कोमल ध म कोमल ग कोमल रे कोमल ग म कोमल ग कोमल रे कोमल ग प या प कोमल ध कोमल नी कोमल ध म कोमल ग प इस प्रकार पंचम पर न्यास करना चाहिए। परंतु प कोमल ध प इस तरह धैवत लगाकर पंचम पर विश्राम किया गया तो भूपाल तोड़ी या भैरवी राग अवश्य सामने आएगा। यदि धैवत के बाद पंचम लगाना है तो धैवत पर रुक कर इस प्रकार लगाना चाहिए, यथा म कोमल ग कोमल रे ग कोमल रे कोमल ग प कोमल ध नी कोमल कोमल ध म कोमल ग कोमल रे ग। उपरोक्त ढंग से राग के पूर्वांग को निभाना चाहिए। प्रस्तुत राग के उत्तरांग में कोमल ग प कोमल ध तार सा के बीच बीच में कोमल ध कोमल नी कोमल ध कोमल नी कोमल ध म कोमल ग प कोमल ध तार सा या कोमल रे तार कोमल नी कोमल ध तार सा इत्यादि स्वर समूह को बार बार सामने लाना चाहिए, जिससे भूपाल तोड़ी का आभास न होने पावे। अंतरे का उठाव अधिकतर धैवत से होता है, यथा कोमल ध कोमल ध कोमल नी कोमल ध तार सा, या कोमल ध म कोमल ग प कोमल ध तार सा, तार कोमल रे कोमल नी कोमल ध, प कोमल ध कोमल नी कोमल ध, म ग। स्वर समूह से थोड़ा कोमल आसावरी का आभास होता है, परंतु कोमल ध म कोमल ग के आगे कोमल रे कोमल ग या कोमल रे कोमल ग म कोमल ग ऐसा स्वर लगाने से उसकी छाया दूर हो जाती है, क्योंकि कोमल आसावरी के आरोह में गंधार वर्जित है, साथ ही गंधार अति कोमल नहीं है। इस प्रकार भैरवी, भूपाल तोड़ी, कोमल आसावरी ये तीनों राग बिलास खानी तोड़ी के संप्रकृति राग होने पर भी उच्चारण व वर्जित भेद से काफी भिन्न हैं। राग भैरवी संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग होने से एवं खटके मुरकी के अधिक प्रयोग के कारण उसकी गति चपल है, अतः बिलास खानी तोड़ी से भिन्न है। भूपाल तोड़ी औडव जाति का होने से बिलास खानी तोड़ी से भिन्न है। कोमल आसावरी के आरोह में गंधार और निषाद वर्जित है, इस प्रकार यह बिलास खानी से दूर है, परंतु राग में कोमल ध तार सा, तार कोमल रे कोमल नी कोमल ध म स्वर संगति मुख्य रूप से आती है। षड्ज, गंधार, पंचम एवं धैवत इसके न्यास के स्वर हैं। स्वरों का प्रयोग तथा महत्व। प्रस्तुत राग में पुरिया और मारवा की भांति षड्ज का अल्पत्व है। पुरिया और मारवा में कोमल मंद्र नी रे कोमल मंद्र ग कोमल रे कोमल मंद्र नी कोमल मंद्र ध अथवा तीव्र म कोमल मंद्र ग कोमल रे कोमल मंद्रनी इस प्रकार प्रयोग होने से आरोह अवरोह दोनों में ही षड्ज का अल्पत्व हो जाता है, परंतु बिलास खानी तोड़ी में केवल अवरोह में कोमल रे कोमल मंद्रनी कोमल मंत्र ध करते समय षड्ज का अल्पत्व है। अवरोह करते समय यह कृत्य इस राग में आवश्यक रूप से करना पड़ता है, क्योंकि तार सा कोमल नी कोमल ध इस तरह गाने से आसावरी अथवा भैरवी राग होने का भय रहता है। ऐसे तो हर राग की भांति इस राग में षड्ज का उतना ही महत्व रहता है। षड्ज के बिना तो राग का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। चूंकि षड्ज का अल्पत्व होना इस राग की एक विशेषता है, अतः तद विषयक चर्चा यहाँ की गई है। पृष्ठ संख्या 144। ऋषभ का इस राग में आलंघन बहुत्व है, क्योंकि आरोह अवरोह में कभी भी इस स्वर को छोड़ते नहीं है, यथा सा कोमल रे कोमल ग कोमल रे कोमल ग कोमल रे कोमल मंद्रनी कोमल मंद्रनी कोमल मंद्र ध सा इत्यादि। इस राग में गंधार का इस भांति प्रयोग होता है, सा कोमल रे कोमल ग कोमल रे कोमल ग कोमल रे कोमल मंद्रनी कोमल मंद्र ध सा कोमल रे कोमल मंद्रनी सा कोमल रे कोमल ग म कोमल ग कोमल रे कोमल ग प कोमल ध म कोमल ग कोमल नी कोमल ध म कोमल ग कोमल रे कोमल ग म कोमल ग कोमल रे कोमल ग कोमल रे सा। इस प्रकार प्रस्तुत राग में गंधार का अधिक और दीर्घ प्रयोग होने के कारण इस राग में रागांग न्यास बहुत्व है। रागांग इसलिए कहा गया है कि इसी स्वर से इस राग के तोड़ी का प्रकार होने का परिचय मिलता है। मध्यम का इस राग में अनाभ्यास अल्पत्व है, क्योंकि कोमल ध म कोमल ग कोमल रे कोमल ग म कोमल ग कोमल रे कोमल ग इस प्रकार अवरोह करते समय इस पर रुकते नहीं है, परंतु इसे छोड़ते भी नहीं हैं। इसी दृष्टिकोण से यदि यह कहा जाए कि मध्यम का इस राग में अलंघन बहुत्व है तो भी अनुचित न होगा। पंचम का इस राग में न्यास बहुत्व है, जैसे कोमल रे कोमल ग म, कोमल ग कोमल रे कोमल ग प, कोमल थ म कोमल ग, कोमल रे कोमल ग प, तार कोमल रे कोमल नी थ, प कोमल ध कोमल नी कोमल ध, म कोमल ग कोमल रे कोमल ग प। इस प्रकार पंचम का प्रयोग बहुत्व का स्थान ग्रहण कर लेता है। धैवत का इस राग में सर्वांग तथा आंशिक न्यास, अंश अर्थात वादी स्वर से संबंधित न्यास बहुत्व है। सर्वांग इसलिए कहा गया है कि आरोह अवरोह दोनों ही ओर से इस पर न्यास होता है। साथ ही आंशिक इसलिए कहा गया है, यह स्वर इस राग का प्राण अर्थात वादी स्वर है। वादी स्वर के शास्त्रों में अनेक नाम प्रयोग किए गए हैं, जैसे प्राण, जीव, अंश, नृप इत्यादि। आलाप में धैवत के प्रयोग को देखकर धैवत का यह अनन्य महत्व शीघ्र ही समझ में आ जाएगा। इस राग के आरोह में निषाद का प्रयोग कोमल ध कोमल नी कोमल ध तारसा व कभी कभी शीघ्रता से कोमल ध कोमल नी तारसा इस प्रकार भी हो जाता है, परंतु आरोह में निषाद का मुख्य प्रयोग कोमल ध कोमल नी कोमल ध तारसा इस प्रकार होता है। अतः आरोह में निषाद का लंघन अल्पत्व है। अवरोह में कोमल तार रे कोमल नी कोमल ध कहते समय इसको छोड़ते भी नहीं है, परंतु इसको दीर्घ भी नहीं कर सकते। अतः निषाद का अवरोह में अनाभ्यास अल्पत्व कहना अधिक उपयुक्त है। प्रस्तुत राग की प्रकृति शांत तथा गंभीर होने के कारण भक्ति रस के गाने इसमें अधिक अच्छे लगते हैं। कलात्मक ढंग से अपने गायन का प्रदर्शन करने के साथ ही यदि गायक बंदिश में ईश्वर संबंधी तथ्यों का प्रयोग करे तो सोने में सुगंधित वाली कहावत चरितार्थ होगी, क्योंकि संगीत तो भगवत चर्चा का साधन है। अतः इस तथ्य का ध्यान गायक को अवश्य रखना चाहिए। पृष्ठ संख्या 145। आरोह सा कोमल रे कोमल ग प कोमल ध कोमल नी कोमल ध तार सा। अवरोह तार सा तार कोमल रे कोमल नी कोमल ध म कोमल ग कोमल रे कोमल ग कोमल रे सा। मुख्य स्वर समूह कोमल ध म कोमल ग कोमल रे कोमल ग कोमल रे मंद्र कोमल नी मंद्र कोमल ध सा।